मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं, मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
ओम शांति। क्लास का विषय है स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव। तो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को राज योगी बनाया है, प्रजा योगी नहीं बनाया। और जब हम राज योगी कहते हैं तो उसका अर्थ है स्व पर राज्य करना, स्व की कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना, यानी वो योग जो हमें कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनाता है और भविष्य में राजाओं का राजा बनाता है। जो देवता हैं वो राजाओं के भी राजा हैं, क्योंकि आज के राजाएं भी उन देवताओं की पूजा करते हैं। फिर सतयुग में भी स्टेटस है, बाबा कहता है विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं या रॉयल फैमिली में आते हैं या राज्य अधिकारियों के राज्य में आने वाले बनते हैं। ये सब हमारे अभी वर्तमान के स्वराज्य पर निर्भर होता है। तो कर्मेंद्रियां बाबा के श्रीमत अनुसार चलें तब तो बहुत सहज है, और बाबा ने हर कर्म की श्रीमत दी है। अमृत वेले से रात तक हर कर्मेंद्रिय को कैसे चलाना है सभी को मालूम है। अभी तो भट्टी पूरी की है, आपने अनेक क्लासेस में ये मार्गदर्शन लिया है। तो सबसे पहले स्थूल कर्मेंद्रियां हैं हमारी और फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। स्थूल कर्मेंद्रियां जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं मन इंद्रियों के वश चलता है। सामान्यतः मन इंद्रियों का गुलाम होता है। दुनिया में जो साधारण जीवन जीते हैं उनकी ये स्थिति होती है कि परिस्थितियों के वश मनुष्य का जीवन चलता है। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं, राजयोगी बनते हैं, तो परिस्थितियों के वश नहीं, परिस्थितियों के अधिकारी होने लगते हैं। परिस्थितियों के वश जीते हैं तो कभी खुश होंगे कभी उदास होंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। तो वैसे ही मनस्थिति भी बदलती रहती है, लेकिन स्व स्थिति के आधार पर परिस्थिति बदल जाए, इसे कहते हैं कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार। और सदा खुशियों की जीवन, सदा मौज की जीवन, आनंद की जीवन, स्वमान की जीवन जिसे हम कहेंगे, वो हम अनुभव करते हैं। तो स्थूल कर्मेंद्रियों में आँख हमारी मुख्य कर्मेंद्रिय है। जो हम देखते हैं वो सूचना मन तक जाती है। जब तक हमने किसी चीज को देखा नहीं है उसके बारे में मन में संकल्प कम उठता है, लेकिन देखा तो देखने के बाद हम उस पर सोचने लगते हैं, चाहे वो वस्तु है या व्यक्ति है। मानो कोई व्यक्ति से हम सालों पहले मिले और आज हमें वो कहीं दिख गया। अब उस समय जो जो बातचीत हमारी उनके साथ हुई, जो भावनाएं हमने उनसे अनुभव की, वो सब आज हमें स्मृति में आने लगेंगी उस व्यक्ति को देखते ही। बाबा की श्रीमत क्या है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है? आत्मिक दृष्टि वृत्ति से देखना है, ये बाबा की श्रीमत है। और आत्मिक दृष्टि वृत्ति से आत्मा के आदि अनादि स्वभाव को देखना है, वर्तमान स्वरूप को नहीं देखना है। दूसरों को भी आत्मा देखना है लेकिन गुणग्राही दृष्टि हो, शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि हो, उसके वर्तमान स्वरूप पर नजर ना हो। और जब हम आत्मिक दृष्टि वृत्ति से चलते हैं पूरे दिन के कार्य व्यवहार में, तो कई विकारों से हम स्वतः बच जाते हैं, यानी माया जीत बनने में हमें मदद मिलती है। इसको बाबा कहता है निराकारी सो निर्विकारी, आत्मिक स्थिति माना अशरीरी स्थिति। तो जब अशरीरी स्थिति है, क्योंकि देह अभिमान सब विकारों की जड़ है, अशरीरी स्थिति ही हमें निर्विकारी अवस्था का अनुभव कराती है। तो मानो हम देह अभिमान में आए, आत्मिक दृष्टि वृत्ति बाबा ने कहा जरूर है, लेकिन रैदी कितना समय है, योग में बैठे तब थोड़ा समय, मुरली सुनने बैठे तब थोड़ा समय, याद किया मैं आत्मा हूँ, लेकिन सारा दिन कार्य व्यवहार में व्यस्त हुए और भूल गए, देह अभिमान में आ गए, कर्म कॉन्शियस हो गए। तो देह अभिमान आते ही सबसे पहला विकार जो होता है वो बाबा कहता है काम विकार, और काम से फिर क्रोध का जन्म होता है। तो यदि दूसरों की भी देह पर नजर जाती है, दैहिक दृष्टि वृत्ति है, दैहिक आकर्षण में बुद्धि चली जाती है, ये ऐसा है ये वैसा है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, उसमें बुद्धि चली जाती है, तो इसका मतलब आंख पर मेरा अधिकार नहीं है, मैंने उसके सत्य स्वरूप को नहीं देखा। तो वृत्ति चलायमान है ना, वृत्ति चंचल होती रहती है और उसका असर हमारे मन की अवस्था पर पड़ता है। और इसीलिए बाबा कहता है सारे दिन में कम से कम हर घंटे में एक मिनट, हम मधुबन में सुनते ना हर घंटे में एक मिनट ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो किस लिए होता है, अशरीरी स्थिति का हम अभ्यास करें, आत्मिक स्थिति का हम अभ्यास करें। हर रोज साकार मुरली में होता है देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करो, पहला पाठ है और अंतिम पाठ भी है। 63 जन्मों का जो देह अभिमान का अभ्यास पड़ा हुआ है वो इतना गहरा है कि शरीर नहीं भूलता है। हाँ, भले अभी समझ में आ गया, जान भी लिया, मान भी लिया मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी देह भान जाता नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जब कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज के साथ साथ फिर रेस्ट भी बताते हैं, रेस्ट करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और फिर से ये हील होगा। तो बाबा भी हमें कहता है न्यारे हो जाओ, देह और देह के संबंधों से न्यारा होकर के पूरी तरह से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, शुरू में सुनते ना कैसे आत्मा का अभ्यास किया, उस दृष्टि वृत्ति को कैसे बनाया, लिख लिख करके भी अपनी डायरियां भरी, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, बाबा की बहू का नाम राधिका था, उनकी बेटी का नाम पालू था जो बाद में निर्मल शांता दादी कहलाई, पालू आत्मा है। तो हरेक के प्रति वो दृष्टि वृत्ति बनाएंगे, हमें भी उतना अभ्यास, अगर हमारी अभी तक नहीं बनी है तो उतना अभ्यास करना होगा, तब आंखों पर हमारा अधिकार होगा, नहीं तो दृष्टि वृत्ति चंचल होती रहेगी और हम उसके वश होंगे तो विकार पर जीत नहीं पा सकते, माया जीत नहीं बन सकते।
शिव पिता को अब याद
फिर दूसरी कर्म इंद्रिय हमारी कान है। तो बाबा की श्रीमत क्या है, संगम युग में कानों से क्या अंदर जाना चाहिए, बाबा का ज्ञान या ऐसी बातें जो हमें उन्नति में मदद करें। लेकिन वही बाबा कहता है कि आज हमें कथा कहानियां सुनने की द्वापर युग से आदत पड़ी हुई है, और वो जितने भी कथा कहानियां हैं वो सारी मिलावट वाली कहानियां हैं और कन्वर्स देती हैं। कहानी सुनने में क्या होता है, अच्छा लगता है ना, कन्वर्स मिलता है, लेकिन सार कुछ भी नहीं होता है। राम रावण की युद्ध हुई, पूरा सार क्या हुआ। तो यहाँ भी किसी की बातें, पर चिंतन की बातें सुनने में चले गए तो बहुत रस आता है, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, किसी की निंदा गलाने की बातें। ज्ञान सुनना तो उसमें थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, एकाग्रता चाहिए। तो कई बार ज्ञान सुन सुन के जल्दी थक जाते हैं, अभी भी देखो बैठे हैं, मैं देख रही हूँ कितने उठ उठ के जा रहे हैं। तो ज्ञान सुनने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अभी यही किसी को कह दो 3 घंटे की फिल्म देखनी है, मनोरंजन की कोई चीज है, तो घंटों बैठ जाएंगे। तो क्या सुनना है कानों से जो हमें पुरुषार्थ में मदद करे, जो हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाए। कई बार ऐसा होता है कि हम सचमुच नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन अब जो सुनाने वाला है वो हमसे बड़ा है, मानो जिसके आगे हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर है वो परचिंतन की बातें है ना, जिसको हम तेरी मेरी की बातें कहते हैं या इसकी उसकी बातें कहते हैं। तो फिर बाबा ने हमें 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। लेकिन क्या होता है, दोनों कानों के बीच में दिमाग है, तो निकलता नहीं है वो दूसरे कान से, दिमाग चलने लग जाता है, अच्छा ऐसे हुआ, इसने ऐसे कर दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्यों करना चाहिए। और अगर वो ज्ञानी आत्मा है तब तो और ज्यादा प्रश्न। अज्ञानी आत्मा को तो हम माफ कर देते हैं आसानी से, हम सोचते हैं इनकी तो हमें सेवा करनी है ही अज्ञानी ना, वो अज्ञानी है तो उसको तो समझ ही नहीं है। लेकिन अगर ज्ञानी है तब तो मन बिल्कुल हलचल में आ जाएगा अच्छी तरह से। और फिर जब मन में हलचल मची है, जैसे बाबा कहते हैं ना, जी कच्ची होती है तो क्या करते हैं, उल्टी करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं जगह ढूंढते हैं, तो दिल हल्का हो जाए, उल्टी हो जाए। तो यहाँ भी क्या करते हैं, हाँ मन भारी हो जाएगा तो समा नहीं सकते, कहीं ना कहीं मुझे जरूर सुनाना है, और मैंने सुना दिया। अब जब हम सुनाने जाते हैं ना, तो उसी भाव से नहीं सुनाते हैं जिस भाव से मैंने समझा है। हर एक की समझ अपनी अपनी होती है, तो उसमें मेरी समझ भी मिक्स करते हैं, जिसको कहते हैं उसको चटपटा बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि सिंपल चीज नहीं अच्छी लगती, चटपटी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, और फिर हम दूसरे को वो परोस देते हैं। अब दूसरे में हलचल होती है, वो तीसरे को परोसता है, ऐसे ही होता है। जो बात नहीं फैलनी चाहिए फैलती रहती है, और हम देखते हैं कि हम पूरे जहां भी सेवा केंद्र पर हैं, सेवा केंद्र में, घर पर हैं, घर में, उस वातावरण को हम कमजोर बनाते हैं। तो पाप के निमित्त कौन बना। बात थोड़ी सी होती है, जब कोई कहता है ना तो वो बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन जब वो बार 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 कही जाती है तो राय भी पहाड़ बन जाता है। कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं ना, जो वास्तव में बात होती है वो फैलते फैलते वो रूप रहता ही नहीं है उसका। और जो सुनता है, जिसकी बात होती है, वो सोचता है कि देखो मैंने इतने विश्वास से इसको कहा है और इसने क्या किया। तो कई बार संबंध ही टूट जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे धोखा मिला। तो कानों पर हमारा अधिकार माना, जैसे मम्मा का जीवन हमने देखा, सभी ने सुनी ना मम्मा की विशेषताएं, अभी 24 जून हमने मनाया, तो इतनी गंभीरता थी मम्मा के अंदर कि अगर कोई बात मम्मा तक आई, कभी भी मम्मा के मुख से वो बाहर नहीं जाएगी। तो इतना हमारा अधिकार हो कि अगर हमने सुन भी लिया है, मानो कोई बात गलत कान में पड़ ही गई, मेरे से वो दूसरे तक ना जाए। हाँ ठीक है, अगर आपके मन में हलचल हुई है तो किसको सुना दो, किसको सुनाओ, बाबा को सुनाओ। और अगर लगता है कि सचमुच ये बात ऐसी है जिससे यज्ञ के डिसर्विस हो सकती है, हमें निमित्त बने हुए के ध्यान में लाना ही चाहिए, तो फिर जो निमित्त आत्मा है उसको भी हम शुभ भाव से सुनाएं। ऐसे नहीं फिर अपनी मिलावट करके, मिलावट बनावट करके उसको अच्छी तरह से कथा का रूप दे करके फिर लाए, नहीं, बिल्कुल सच्चे भाव से, शुभ भाव से उस बात को हम सही स्थान पर रखें। फिर मुख की बात बाबा कहता है, हाँ तो सबसे ज्यादा जो कम अधिकार है हमारा वो मुख रूपी कर्मेंद्रिय पर है। बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा की श्रीमत है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। लेकिन कम बोलना वो हम ब्राह्मण बनने के बाद लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही हम ईश्वरीय सुख का अनुभव करेंगे, हमारा बुद्धि योग बाबा से सहज लगेगा। लेकिन आदत पड़ी हुई है किसी किसी को बोलने की, बिना बोले रह ही नहीं सकते, और अगर चुप रहने के लिए कहा जाए तो लगता है सजा मिल गई हो। मौन, मौन को बहुत बड़ी ताकत माना जाता है, और इसीलिए मुझे याद है जब हम शुरू शुरू में यज्ञ में आए थे तो हर सोमवार मौन दिवस के रूप में मनाया जाता था, और जो भी मौन रख सकते थे, चलो कोई कारोबार के कारण थोड़ा बोलना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश करके सिर्फ उतना ही बोलना है जितना बहुत जरूरी है, कोई व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी है, ऐसा यज्ञ में मधुबन में लक्ष्य रखा जाता था। मुझे सेंटर्स का तो पता नहीं, आज वो स्थिति तो नहीं है, ये पांडव भवन की बात है, लेकिन दादियां फिर भी कहते हैं कि सुबह 4 से 8 बजे का समय वो हमारा अपना समय है। ज्यादा कारोबार उस समय होती नहीं है, तो कम से कम हर दिन हम वो 4 घंटे तो अवश्य मौन रखें। लेकिन बहनों के बारे में प्रसिद्ध है कि कहां 2 बहनें हों और चुप बैठी हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हो सकता है कि 2 बहनें साथ में बैठी हों और चुप बैठी हों। और कई बार ऐसे भी कहते हैं कि बाबा ने बहनों को निमित्त क्यों बनाया, बाबा ने बहनों को इसलिए निमित्त बनाया क्योंकि वो जो सुनेंगी वो बोले बिना रह नहीं सकती, तो वो ज्ञान जल्दी जल्दी फैलेगा दूसरों तक, वो जल्दी विस्तार हो जाएगा। तो बाबा ने उस कमी को विशेषता के रूप में देखा, और इसीलिए वंदे मातरम मतलब ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा है। तो यहाँ भी हमें अपने आप पर अटेंशन देना है, कहीं वो मेरे पुराने बोलने के संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते हैं। फिर धीरे बोलना है, यानी सभ्यता से बोलना है। जो रॉयल आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, वो कभी भी जोर जोर से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, वो उतनी ही आवाज में बात करते हैं जितना कि वो जिसको सुनाना चाहते हैं वो सुन सके। पर कई कहते हैं बहन जी हम क्या करें, हमारा तो आवाज ही ऊंचा है, हम इतना ऊंचा बोलना नहीं चाहते, पर हमारा गला ही ऐसा है, ऊंचा ही आवाज निकलता है, और लोग समझते हैं कि हम गुस्सा कर रहे हैं, पर हम वास्तव में गुस्सा नहीं कर रहे, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं है। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है ये जो माइक है इसकी आवाज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, तो आत्मा मालिक क्या अपने मुख के माइक की आवाज को कम ज्यादा नहीं कर सकते? कर सकती? नहीं कर सकती? कर सकते हैं। तो अपने कंट्रोल में है कि मेरे मुख का आवाज मुझे कितना निकालना है। मीठा बोलो बाबा कहता है, बाबा ही हमें मुरली में रोज मीठे मीठे बच्चे सिकिलदे बच्चे कहते हैं, और बाबा ने हमें मीठे मीठे बच्चे कह करके मीठा बनने का रास्ता दे दिया। तो ऐसे ही हमारे बोल भी दूसरों को सुख देने वाले हों, दूसरों को उत्साह देने वाले हों, हिम्मत देने वाले हों, आशा देने वाले हों, इसको हम मीठे बोल कहते हैं। कड़वे बोल हम कब बोलते हैं? कब बोलते हैं हम कड़वे बोल? जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है या किसी की गलती हम देख लेते हैं, कमजोरी देख लेते हैं, तब फिर हम उनके प्रति जो शब्द बोलते हैं वो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। ते द्रौपदी के दो शब्दों ने महाभारत करा दी, सभी को पता है कि वो दो शब्दों ने महाभारत का पूरा युद्ध पांडव कौरव को सामने सामने खड़ा कर दिया। तो क्या मेरे मुख से ऐसे शब्द तो नहीं निकल जाते जो विनाशकारी हो जाएं, किसी को गिराने के निमित्त बन जाएं, किसी का अपमान कर दें? ये अपनी चेकिंग हर रोज चाहिए। इसलिए बाबा कहता है चार्ट रखो, कि हम चार्ट में चेक कर लेते हैं कि मेरे मुख से जो वचन निकले वो बाबा की श्रीमत अनुसार थे या नहीं थे। गांधी जी के तीन बंदर दिखाते ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो, ये चौथा बाबा ऐड करते हैं। तो सोचना भी नहीं है बुरा, देखना सुनना बोलना तो है ही है, लेकिन मन पर भी हमारा अधिकार है। मन हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार ये तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो मन पर अधिकार माना, मन में हम जो संकल्प चलाना चाहें वो चला सके। मन मेरे वश में है, मैं मन के वश में नहीं। अगर हम कोई परिस्थिति के वश बहुत उलझन में है, मानो कभी कभी मन ऐसे उलझन में चला जाता है, या कभी कभी मन व्यस्त संकल्पों में चला जाता है, छोटी छोटी बातों को हम बहुत सोचने लग जाते हैं, या कोई परिस्थिति ऐसी आ गई तो मन प्रश्नों में भी चला जाता है, जैसे अभी हमने बात की, ऐसे समय पर अगर मैं मन को स्टॉप करना चाहूं और मन में सोचूं कि इस समय मेरा मन सिर्फ बाबा को याद करे, क्योंकि योग ही हमारे लिए समाधान है, कोई भी समस्या आई है उसका समाधान बाबा को याद किया और वो शक्ति मिली और हमारा हल हो जाता है। तो उस समय अगर मैंने मन को संकल्प दिया मैं बाबा के साथ हूँ, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो मन उस स्थिति में एकाग्र हो जाए, तब कहेंगे कंट्रोलिंग पावर है या मेरी अपने ऊपर रूलिंग पावर है। ऐसे नहीं मैं सोचती हूँ मेरा मन यहाँ फुल स्टॉप हो जाए, ये जो बातें मेरे मन में व्यर्थ चल रही हैं ये समाप्त हो जाएं, और उस घड़ी समाप्त नहीं होती है, टाइम लग जाता है, माना घंटे लग गए मुझे उस बात को खत्म करने में, या घंटे छोड़ो दिन लग गए, कई बार महीनों भी लग जाते हैं ना, इतना मन डिस्टर्ब है कि महीनों लग गए मेरे मन से वो बात ही नहीं निकल रही है, तो क्या कहेंगे, मन के गुलाम हैं या मन के अधिकारी हैं? बाबा कहता है मन के अधिकारी बनने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तभी आप जहां ब्रेक लगाना चाहेंगे वहीं लगेगा। अब मानो गाड़ी जा रही है और जहां ब्रेक लगाएं वहां नहीं लगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। अगर ब्रेक यहां लगनी चाहिए उसकी बजाय एक मीटर आगे जाके लगती है, तब तक तो दूसरी गाड़ी सामने आ जाएगी। तो ये भी ऐसा ही है कि अगर मन को ब्रेक नहीं लगाना आता है तो हम कभी भी लास्ट क्वेश्चन का जो पेपर बाबा कहता है, जब परिस्थितियां मन को हिलाने वाली होंगी, विकराल स्थिति में वो परिस्थितियां होंगी, और बाबा कहता है एक ही सेकंड का क्वेश्चन होगा, ज्यादा लंबा समय मिलने वाला नहीं है, और आपका मन वो एक घड़ी में बात नहीं मानता है, दो तीन घड़ी लगा देता है, तो फेल हो जाएंगे। तो फेल होना है या पास होना है? पास होना है ना। तो इसीलिए अभी से अपने मन का अभ्यास चाहिए, अभी से चेकिंग चाहिए कि मेरा मन मेरी बात मानता है। तो उसका आधार है बाबा की मुरली, शुभ चिंतन। जितना मन में शुभ चिंतन चलेगा उतना मन पर हमारा कंट्रोल होगा। अब शुभ चिंतन, विचार सागर मंथन चलाने के लिए भी अभ्यास चाहिए। मुरली तो हम सब सुनते हैं, बहुत प्यार से बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली सुनते हैं तो हमें वो खुशी भी होती है, लेकिन याद नहीं रहती है। समस्या क्या है? याद नहीं रहती है। तो जरूर हमें कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहिए। आजकल तो दूसरे भी बहुत साधन हैं, पीस ऑफ माइंड टीवी आजकल सबके घर में है, उसमें भी मुरली की पॉइंट्स चलती रहती है, या जो लोग इंटरनेट जानते हैं इंटरनेट से भी उनको मुरली मिल जाती है। तो मुझे अटेंशन रखना है कि जब भी मेरा मन खाली होता है, जब कार्यों में व्यस्त है तब तो मन व्यस्त है, तब तो व्यर्थ चलने की मार्जिन ही नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मन फुर्सत में आता है, हम काम से फुर्सत में आते हैं, मेरे मन में कौन से विचार चलने लगे? आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज मेरा स्वमान ये है, बाबा ने मुझे ये स्वमान दिया है, तो इस स्वमान का राज क्या है? हाँ, इससे मैं अपने प्रति कैसे यूज करूं जो उसकी खुशी और नशा मुझे हो? इसके द्वारा मैं बाबा की समीपता कैसे अनुभव कर सकती हूँ? अन्य आत्माओं की सेवा मैं कैसे कर सकती हूँ? ये चिंतन चलाने की विधि है। जैसे हम क्यों, क्या, कैसे में जाते हैं तो प्रश्नचित हो जाते हैं, ये ज्ञान के क्यों, क्या, कैसे, बाबा ने ये बात क्यों कही, इसका राज क्या है, इसको हम कैसे यूज करें कि हम सफल हों, हम माया जीत बने, हम प्रकृति जीत बने, हम विजयी बने। तो अगर मेरा ध्यान उस पर है तो व्यर्थ चलने की मार्जिन ही नहीं है, और फिर मन शक्तिशाली बनता है। जितना शुभ चिंतन चलेगा मन के अंदर उतना मन शक्तिशाली है, और जब चाहे जो स्थिति बनाना चाहे वो हम बना सकते हैं। मैं चाहूं कि मैं निराकारी स्थिति में, परम धाम में, बिंदु स्थिति में बाबा को याद करूं, तो मेरा मन उस बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि मैं फरिश्ता स्वरूप में, अव्यक्त स्थिति में, सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलन बनाऊं, तो मेरा मन वो अनुभव करेगा। हम सोचते हैं बाबा की लगन में मगन, प्रेम के सागर में मैं समा जाऊं, लवलीन हो जाऊं, तो उस स्थिति का भी हम अनुभव कर पाएंगे तब जब मन सदा शुभ चिंतन में है। बाबा कहता है ज्ञान पेट्रोल का काम करता है, तो रिफाइंड पेट्रोल चाहिए ऊपर जाने के लिए। जैसे एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ता है ना, तो उसमें रिफाइंड पेट्रोल भरा जाता है। साधारण पेट्रोल भर देंगे तो वो हवाई जहाज गति नहीं पकड़ सकता। तो मन बुद्धि भी बाबा के पास सहज उड़ती कला में उड़ जाए, और बाबा से वो हम अनुभव लें जो हम लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बुद्धि रिफाइन चाहिए। और वो कब रिफाइन होगी? जब उसमें ज्ञान का पेट्रोल पड़ता रहेगा। ऐसे नहीं सुबह सुबह डाल दिया ना बस बहुत हो गया, आत्मा को मुरली मिल गई। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं जो रॉयल लोग होते हैं वो दो बार स्नान करते हैं, तो बाबा के बच्चों को भी दो बार ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए, एक सुबह मुरली एक शाम को। मैं बड़ी दादी जी के साथ काफी सालों रही हूँ और मैंने देखा दादी को प्रैक्टिकल कि दादी प्रकाश मणि जी दिन में चार बार मुरली पढ़ते थे, जबकि ओम मंडली के समय से उन्होंने मुरली सुनी। हम तो अभी मुरली सुनने लगे समझो, जितने भी साल हुए हमें ज्ञान में, लेकिन पूरा जीवन बचपन से लेकर आज तक मुरली सुनी थी उन्होंने। लेकिन फिर भी दादी का इतना अटेंशन कि जैसे ही दादी को फुर्सत मिलती थी दादी मुरली पढ़ते थे, अमृत वेले पढ़ते थे, मुरली क्लास में मुरली सुनाते थे, फिर शाम को रेस्ट करके उठे तो मुरली पढ़ते थे, और कभी भी रात को बिना मुरली पढ़े दादी सोते ही नहीं थे। कितनी भी देर हो जाए, 11 बज गया, 12 बज गया, कितना भी टाइम हो गया, मुरली नहीं पढ़ूंगी तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, और मुरली पढ़ ली उसके बाद एक मिनट में सो जाते थे। तो कई बार आश्चर्य होता था, हम देखते थे कि दादी इतने बड़े कारोबार को संभालती है ना। आज देखो एक घर चलाने वाले आप हो तो जब रात को सोने जाते हैं बिस्तर पर कितनी बातें कितनी चिंताएं, ये हुआ ये नहीं हुआ, ये करना है, बच्चे ने ये किया, ये बीमार हो गया, जो भी उस समय याद में आता है और नींद आने में आधा घंटा लग जाता है। कैसा चिंतन उस समय मन में चलता है उसका असर पड़ता है, लेकिन दादी को हम देखते थे एक मिनट में दादी सो जाते थे, क्योंकि बाबा को समर्पित कर दिया ना, मुरली पड़ी माना मन बिल्कुल उन बातों से न्यारा हो जाता। तो चलो हम चार बार नहीं पढ़ सकते, और कई माताएं तो ऐसी होंगी जो पढ़ते ही नहीं है, समझो गांव में रहते हैं, स्कूल में गए नहीं, पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। आजकल तो कम होते हैं ऐसे, पहले जमाने में तो ज्यादा होते थे, लेकिन आजकल सबको लगभग पढ़ना लिखना तो आता है। आप में कोई है जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं? देखो अभी भी कितने हाथ उठा रहे हैं। तो पढ़ना लिखना बाबा की मुरली के खातिर सीख लेना चाहिए, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आपके बच्चे ही आपको पढ़ा देंगे, तो पढ़ना सीख लेना चाहिए। और जब भी हमें काम से फुर्सत मिलती है बस एक ही लगन, एक ही तात एक ही लाज जिसे कहते हैं, कि बस बाबा की मुरली उठाई, और वही हमारे मन के शुभ संकल्पों का अधिकार है, वो हमें मन का अधिकारी बनाने वाली है। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है। बाबा कहता है कि बुद्धि सही समय पर सही निर्णय करे। मानो मुझे किसी बात में सहन करना है तो मैं सहन कर लूं, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इस समय सहन कर लेना चाहिए तो मैं सहन कर लूं। ऐसे नहीं कि सहन करने की बजाय मैंने सामना करना शुरू कर दिया तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी ना, बात बिगड़ जाएगी तो उसको संवारना बहुत मुश्किल होगा। तो एक सेकंड की भी चूक हो गई निर्णय करने में तो हमारे हाथ से वो निकल जाती है सफलता। तो ये हमें ध्यान रखना है, जहां हमें विस्तार करना है वहां हम विस्तार कर लें। मानो मुझे किसी को ज्ञान समझाना है तो मुझे एक एक पॉइंट का विस्तार करना पड़ता है ताकि उसे समझ में आए, तो हमने विस्तार कर लिया। लेकिन जहां विस्तार को सार में लाना है, कोई बात बढ़े नहीं बिगड़े नहीं किसी को दुख नहीं पहुंचे या वातावरण में फैले नहीं, तो मुझे समा देना है, उसको सार में ले आना है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। तो वो मैं कर पाऊं जिस समय जो निर्णय चाहिए वो निर्णय सही मेरी बुद्धि लेती है तो मेरा अपनी बुद्धि पर अधिकार है। और ऐसे ही संस्कार, बाबा कहता है जो मेरे संस्कार हैं वो मेरे अनादि संस्कार हैं, जो मेरे वर्तमान के संस्कार हैं वो माया के हैं, वो रावण के हैं, द्वापर युग से बने हुए संस्कार है ना, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार, ये संस्कार माया के संस्कार हैं, ये मेरे नहीं हैं। लेकिन जो बाबा के संस्कार हैं, बाबा के संस्कार कौन से हैं? सदा ही शांति के, प्रेम देने के, रहम करने के, सहयोग देने के या शक्ति के, ये संस्कार ये मेरे नेचुरल रूप में इमर्ज हो, हर आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति, व्यवहार में सबको अनुभव हो मेरे से। ऐसे नहीं क्या करूं, मैं करना तो ये चाहती थी लेकिन मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरे से हो जाता है। तो बाबा कहता है अगर मेरे से हो जाता है तो मैं संस्कारों के वश हूं अभी भी। तो चेक करते रहना है कि मेरे संस्कार बाबा जैसे हैं, हम ईश्वरीय संतान है ना, तो मैं अगर ईश्वर की संतान हूं तो मेरे संस्कार ईश्वर जैसे ही होने चाहिए। हमें बाप समान बनना है, बाप समान बनना है नहीं बनना है, बाप समान बनना है तो बाबा के जैसे ही मेरे संस्कार। तो सी फादर फॉलो फादर, कभी भी किसी आत्मा को नहीं देखना है, ये इतने सालों से ज्ञान में चलती है, इसके संस्कार तो बदले ही नहीं, कैसे बोलती है देखो, कैसे चलती है देखो, मानो कुछ भी नजर आता है हमको, कोई भी बाबा के पुराने बच्चे हम देखते हैं तो वो उसका पुरुषार्थ है ना, बाबा ने मुझे छुट्टी दी है क्या उसको देखना है, किसको देखना है हमको, किसको देखना है, बाबा को देखना है। बाबा ने क्या किया है ना, बाबा के गुण मेरे गुण हो, बाबा ने कैसे बोल बोले, कैसे मन में बाबा के सबके प्रति शुभ भावना रही। फिर बाबा हमें कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं, कई बार हमारे मन में ये विचार आता है ना, हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, तो क्या बनने वाले हैं ये ज्ञान के दर्पण में आप खुद देख सकते हो, भगवान को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं राजा बनने वाली हूँ या प्रजा बनने वाली हूँ या दास दासी बनने वाली हूँ या रॉयल फैमिली में आने वाली हूँ, साहूकार बनने वाली हूँ। समझ सकते नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं। तो अगर सभी कर्मेंद्रियों पर मेरा पूरा अधिकार है, मेरी कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा नहीं देती, कभी आंख से दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होती, कानों से कभी धोखा नहीं मिलता, मुख से कभी धोखा नहीं मिलता, तो बाबा कहता है वो राज्य तख्त नशीन माना विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं। उन आत्माओं का अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण अधिकार होगा। लेकिन अगर कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती है, हम सोचते हैं कभी कभी तो मुख से हमारे सदा ही ऐसे वचन निकलते हैं जो सदा दूसरों को सुख देने वाले हैं जैसे बताया, लेकिन कभी कभी तो कोई परिस्थिति के वश समझ ही नहीं आता मैं क्या बोल जाती हूँ। तो इसका मतलब बाबा कहता है अगर एक भी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया तो वो माया का गेट है ना, तो वो आपको राज्य अधिकारी नहीं बनने देगा, आप राज्य अधिकारियों के राज्य में आएंगे, राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, संपूर्ण अधिकार चाहिए। और मानो अगर बार बार वश हो जाते हैं, कभी कभी वश होते हैं तो राज्य मिलेगा लेकिन आधा समय बीतने के बाद, यानी पूरा सतयुग बीत गया उसके बाद थोड़ा वो प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, लेकिन अगर बार बार ही वश हो जाते हैं तो फिर प्रजा बनेंगे, वो निशानी है। और मानो उदास हो जाते हैं, कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है ना, शान से परे हो जाते हैं, उदास रहते हैं, मन में खुशी नहीं रहती है, ऐसी स्थिति वाले क्या बनेंगे, अपने आप बता सकते हो आप, जो उदास हो जाते हैं वो क्या बनेंगे, दास दासी बनेंगे। तो आप सब तो मौज में रहने वाले हो ना, जो यहाँ बैठे हैं वो खुश रहते हैं सदा। तो अगर मैं वश होती हूँ तो वो कर्मेंद्रिय जरूर मुझे उदास करेगी या दुखी करेगी। फिर बाबा कहता है साहूकार कौन बनेंगे, साहूकार वो बनेंगे जिनके पास ज्ञान रत्नों का खजाना है, बहुत ज्ञान का वर्णन बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन जब समय पर वही ज्ञान खुद यूज करके माया जीत बन जाए, सफल हो जाए, वो नहीं होता है। जिसको बाबा पंडित कहता है, पंडित होते ना उपदेश बहुत अच्छा देते हैं लेकिन खुद के जीवन में उसे धारण नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो बैंक में बहुत पैसा पड़ा है लेकिन यूज ही नहीं किया उसको, तो बस बैंक के पैसे की खुशी है, मेरे पास इतना धन है। तो ज्ञान धन बहुत है लेकिन समय पर काम नहीं कर, यूज नहीं कर पाते हैं उसको। तो ऐसे जो आत्माएं हैं वो साहूकार प्रजा बनेंगे। और रॉयल फैमिली में कौन आएंगे, रॉयल फैमिली में ज्यादातर कर्मेंद्रियों के अधिकारी हैं ना, लेकिन कभी कभी कहीं बहुत कम कोई कर्मेंद्रिय धोखा दे देती है। तो अपने आप को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि हम कहाँ हैं, तो कौन सा पद पाने वाले हैं सतयुग में। तो लक्ष्य तो यही है ना, नर से नारायण बनना और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो फिर जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण भी चाहिए, तो उतना हम स्वराज्य अधिकारी बनने का अटेंशन रखें। अगर अभी तक भी नहीं है तो बाबा कहता है अभी भी टू लेट नहीं हुआ है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तो अभी भी हम अपनी ग्रेड चेंज कर सकते हैं। करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो जरूर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे और बाबा समान बन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।
आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगाले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन।